ಶ್ರೀ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಬಡೇ ಪ್ರೇಮ ಸೇ ಬೋಲಿಯೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೌರಾಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭುಜಿ ಗೌರಾಂಗ ಪ್ರಭುಜಿ ಕಾ ಮೈ ಹೃದಯ ಸೇ ಧನ್ಯವಾದ ದೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ, ಔರ್ ಜಿತ್ನಾ ಧನ್ಯವಾದ ದೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ ಉತ್ನಾ ದೇ ಸಕತಾ ಹೂ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಪ್ರಭು. ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ತರೀಕೆ ಸೇ ಆಪ್ನೆ ಯಹಾಂ ಕಾ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಸಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಕಿಯಾ. ಯ ಬಾತೇ ಜೊ ಪ್ರಭುಜಿ ನೇ ಬತಾಯಿ, ಯೇ ಸಮಜನಾ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಹೈ. ನಹೀ ತೋ ಯಹಾಂ ಪೇ ಆನೇ ಕೇ ಬಾದ್ ಕೇವಲ ಮಟ್ಟಿ ಕೀಚಡ ಗಧೆ ಗಾಯ ಸುವರ್ ದಿಖಾಯಿ ಪಡೆಂಗೇ, ಔರ್ ಕುಛ ಟೂಟಾ ಹುವಾ ದಿಖಾಯಿ ಪಡೆಗಾ, ಕುಛ ಗಂದಾ ದಿಖಾಯಿ ಪಡೆಗಾ, ಕುಛ ತಕಲೀಫ ನಜರ್ ಆಯೇಗಿ. ಲೇಕಿನ್ ಜಬ್ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಸಾರ ಹಮ್ ಸಮಝೆಂಗೇ ತೋ ಇನ್ ಸಬ್ಕೆ ಪರೆ ಜಾಕರ್ ಪ್ರೇಮ ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಕೋ ಸಮಝೆಂಗೇ. ಔರ್ ಯೇ ಜಗಹ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕಾ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಹೋನೆ ಕೇ ಕಾರಣ, ಜೈಸೆ ಪ್ರಭುಜಿ ನೇ ಬತಾಯಾ, ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸ್ರೋತ್ ಹೈ, ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಸಾಗರ್ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪರ್. ಔರ್ ಜಬ್ ತಕ್ ಹಮ್ ಹೃದಯ ಸೇ ನಮ್ರ ನಹೀ ಬನ್ತೇ ಹೈ, ಜಬ್ ತಕ್ ಸೇವಾ ಭಾವ ಕೋ ನಹೀ ಅಪ್ನಾತೇ, ಹಮ್ನೆ ಶುರು ಸೇ ಇಸ್ ಥೀಮ್ ಕೋ ರಖಾ ಹೈ, ನಮ್ರತಾ ಔರ್ ಸೇವಾ ಭಾವ. ಜಬ್ ತಕ್ ಯೇ ನಹೀ ಅಪ್ನಾತೇ ಹೈ, ಜಬ್ ತಕ್ ಅಪ್ನೆ ಅಹಂ ಕೋ ಔರ್ ಗರ್ವ ಕೋ ನಹೀ ಛೋಡ್ತೇ ಹೈ, ತಬ್ ತಕ್ ಸುಖೇ ಲೋಟ್ ಕೇ ಜಾಯೇಂಗೇ, ಕೋಯಿ ಫರ್ಕ್ ನಹೀ ಪಡೇಗಾ. ಭಾಗವತ್ ಮೇ ಲಿಖಾ ಹೈ ಕಿ ಗಧೆ ಸುವರ್ ಊಂಟ ಔರ್ ಗಾಯ ಭೀ ಧಾಮ್ ಮೇ ಆತೇ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೇ ಹೈ, ಖಾನಾ ಪೀನಾ ಮೈಥುನ್ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ಕೆ ಚಲೇ ಜಾತೇ ಹೈ. ಹಮ್ ಭೀ ಐಸೆ ಆಯೇಂಗೇ ಐಸೆ ಚಲೇ ಜಾಯೇಂಗೇ, ಬಿನಾ ಕುಛ ಲಾಭ ಲಿಯೇ ಹುವೆ, ಖಾನಾ ಪೀನಾ ಖಾಯೇಂಗೇ, ಅಚ್ಛೇ ರೂಮ್ ಮೇ ರಹೇಂಗೇ, ಥೋಡಾ ಬಹುತ ಘೂಮೇಂಗೇ, ಇಧರ್ ಉಧರ್ ದೇಖೇಂಗೇ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕರೇಂಗೇ, ಚಲೇ ಜಾಯೇಂಗೇ, ಕುಛ ಫರ್ಕ್ ನಹೀ ಪಡೇಗಾ. ಹೃದಯ ಮೇ ತಬ ಅಂತರ ಆಯೇಗಾ ಜಬ್ ಹಮ್ ಹೃದಯ ಸೇ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೀ ಕೃಪಾ ಕೋ ಪುಕಾರೇಂಗೇ, ಉನ್ಕೋ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕರೇಂಗೇ ಕಿ ಹಮ್ ಸಹಿ ಮೇ ಲಾಚಾರ ಹೈ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ ಕಮ್. ಅಭಿ ದಿವಾಲಿ ಚಲ್ಲೇ, ದಿವಾಲಿ ಮರಾಠಿ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಹತೇ ಹೈ, ದಿವಾಳಖೋರ್, ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಜಿಸ್ಕಾ ದಿವಾಲಾ ನಿಕಲ್ ಚುಕಾ ಹೈ, ಐಸೆ ಕಹತೇ ನಾ. ತೋ ವೈಸೆ ಹಮಾರಾ ದಿವಾಲಾ ಅಗರ್ ಹಮಕೋ ಸಮಜತೇ ಹೈ ಕಿ ನಿಕಲ್ ಚುಕಾ ಹೈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ, ಕುಛ ನಹೀ ಹಮಾರೇ ಪಾಸ್, ತೋ ಉಸ್ಕಿ ಪುಕಾರ ವೋ ಸುನ್ತಿ ಹೈ, ಇಸ್ಕೋ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರೇ ಪಾಸ್ ಕುಛ ಹೈ, ಧನ್ ಹೈ, ಪೊಜಿಷನ್ ಹೈ, ಪಾವರ್ ಹೈ, ಥೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಭೀ ಹೈ, ಥೋಡಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಭೀ ಹೈ, ಥೋಡಾ ಬಹುತ್ ಸಾರಾ ಜ್ಞಾನ ಭೀ ಹೈ, ಡಿಗ್ರಿ ಹೈ ಬಡಿ ಬಡಿ ಹಮಾರೇ ಪಾಸ್, ಔರ್ ವೋ ಸಬ್ ಟೋಪಿಯಾ ಪಹನ್ ಕೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಯೇಂಗೇ ತೋ ಹಮಾರೇ ಔರ್ ದಿಖಾ ಭೀ ನಹೀ ಜಾಯೇಗಾ. ಹಾಂ, ತೋ ಅಗರ್ ಉನ್ಕಿ ನಜರ್ ಹಮಾರೇ ಊಪರ್ ಪಡೇ, ಕದಾ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ಹಮಾಂ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಭಾಜನಂ, ಉನ್ಕಿ ಕೃಪಾ ಕೇ ದೃಷ್ಟಿ ಹಮ್ ಪರ್ ಅಗರ್ ಗಿರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ ತೋ ಹಮೇ ಏಕದಮ್ ನಮ್ರ ಹೋನಾ ಪಡೇಗಾ, ಸಭಿ ಗರ್ವ ಕೋ ಸಭಿ ಝೂಟೆ ಅಹಂಕಾರ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ನಾ ಪಡೇಗಾ, ಔರ್ ಉಸ್ ಭಾವ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೇ ನಾಮ ಕೋ ಪುಕಾರನಾ ಪಡೇಗಾ. ಉಸ್ ಭಾವ ಸೇ ಪುಕಾರೇಂಗೇ ತೋ ವೋ ಸುನೇಂಗೇ, ಉಸ್ ಭಾವ ಕೇ ಅಂದರ್ ಅಗರ್ ಧನ್ ಕಾ ಗರ್ವ ಪೊಜಿಷನ್ ಕಾ ಗರ್ವ ರಹೇಗಾ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ, ಔರ್ ಇನ್ ಸೇ ಸಬ್ ಮುಕ್ತ ರಹೇಗಾ ವೋ ಭಾವ, ತೋ ವೋ ಸೀದಾ ಉನ್ಕೇ ಹೃದಯ ತಕ್ ಪಹುಂಚ ಜಾಯೇಗಾ. ತೋ ವೈಸಿ ಪುಕಾರ ಕರ್ನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಯೇ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕಾ ಜೋ ಪ್ರೇಮ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಕೇ ಪ್ರತಿ ವೋ ಇತನಾ ಅದ್ಭುತ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಭೀ ಸಮಜ್ ನಹೀ ಪಾತೇ. ವೋ ದೇಖತೇ ಹೈ ಕಿ ಜಬ್ ವೋ ಮೇರಿ ಸೇವಾ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಮುಜೆ ಆನಂದ ದೇನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಔರ್ ಮುಜೆ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಭೀ ಹೋತಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಮೈ ದೇಖ ರಹಾ ಹೂಂ ಕಿ ಜಬ್ ಮೈ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಉಸ್ಸೆ ಹಜಾರೋ ಗುಣ ಅಧಿಕ ಆನಂದ ವೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಮೇರಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನೆ ಮೇ, ಔರ್ ವೋ ಜೋ ಆನಂದ ಉಸ್ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಅನುಭವ ಮುಜೆ ನಹೀ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಸಬ್ ಕುಛ ಜಾನ್ತೆ ಹುವೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೋತೆ ಹುವೆ ಭೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಇಸ್ ಬಾರೇ ಮೇ ಅಂಜಾನ್ ಹೈ, ಅಜ್ಞ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಇಸ್ಸೆ ಶಾಂತ ನಹೀ ಬೈಠ ಸಕತೆ, ಅರೇ ಠೀಕ್ ಹೈ ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನಹೀ ಪತಾ ನಹೀ ಮುಜೆ, ನಹೀ ವೋ ಜಾನ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಕ್ಯಾ ಆನಂದ ಹೈ ಜೋ ವೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಮೇರಿ ಸೇವಾ ಮೇ, ವೋ ಕ್ಯಾ ಮೇರೆ ಮೇ ಐಸಿ ಬಾತ್ ಹೈ ವೋ ಜೋ ದೇಖತಿ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಮೇರಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾ ಅವತಾರ ಲಿಯಾ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಬಡೇ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹೈ, ಹಮಾರೇ ಹೀ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಅವತಾರ ಲಿಯಾ ಹೈ. 999 कलयुग को समाप्त होने के बाद में हजारवें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और उसके पहले द्वापर में कृष्ण आते हैं। बड़ा भाग्य की बात है, उन्हीं के प्रभाव के कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। तो भाई, तो उनका उद्देश्य था कि वो जो प्रेम गौलोक वृंदावन का है सार, वो ही हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हम सबको बांटा जाए, करुणा के वश, दया के वश, प्रेम के वश, गौलोक प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन। वो देने के लिए तो आए थे, उनका वो भाई उद्देश्य, लेकिन अंदर का उद्देश्य क्या था कि उस प्रेम को समझे जो राधा रानी अनुभव कर रही है। इसलिए राधा रानी का भाव लेकर वो आए। राधा रानी ने कहा, अरे मेरे भाव लेकर जा रहे हो ये समझने के लिए, पागल हो जाओगे, नदी में गिरोगे, पत्थर में गिरोगे, कंकड़ में गिरोगे, कांटों में गिरोगे, अपने आप को जख्मी करोगे, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं मेरी कांति आपको ढकने के लिए दूंगी, ढक दूंगा आपके मेरी कांति से, ताकि आप कहीं भी गिरोगे तो आपको वेदना नहीं होगी और मैं भी शांति से रह सकती हूँ आपको न वेदना होते देखते हुए। इसलिए उनका रंग जो है वो सुनहरा है। राधा रानी जो अपनी कांति है उससे श्री कृष्ण भगवान को ढक देती है और हृदय से भी राधा भाव लेकर वो आए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। तो अगर परम भगवान, परम सर्वज्ञ भगवान को ये अगर जिजीविषा है, अगर कि ये मन में प्रश्न है कि ये प्रेम क्या है, तो थोड़ा बहुत प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए कि क्या प्रेम है ये। अगर वो ये प्रश्न कर सकते हैं सर्वज्ञ व्यक्ति भी, तो हम तो उनके अंश हैं, हमें भी इसी याचना से लेकर यहां पर आना चाहिए। वो क्या प्रेम है, क्या वस्तु क्या है वो। सब लोग कविता बनाते हैं उसके ऊपर, झूठ मूठ के प्रेम के ऊपर, लेकिन ये प्रेम क्या है। प्रभु जी बता रहे थे 100 साल 1 सेंचुरी दूर रहे उनसे। हाँ, रोज सवेरे उठकर माला बनाते हैं, रोज सवेरे रस्ते को सजाते हैं, रोज सवेरे महल को सजाते हैं, लड्डू पकौड़ा पकवान बनाते हैं, दीपक बनाते रेडी रखते हैं, पूरे महोत्सव की व्यवस्था करते हैं हर रोज बिना निराश होते हुए। ये प्रेम का लक्षण है। हाँ, प्रेम मतलब केवल जिस पर प्रेम कर रहे हैं उसका सुख। अरे आप कहेंगे हम तो मथुरा से वृंदावन में आए, कृष्णा वृंदावन से मथुरा गए, एक रिक्शा करके आते हैं यहाँ पर, या तो ये रिक्शा करके टेम्पो करके चले जाते हैं यहाँ पर उनको मिलने के लिए, क्यों नहीं गए। इतने 100 साल तड़पे यहाँ पर, कितनी दूरी थी यहाँ से। चलो टंगा रिक्शा नहीं था उस समय, घोड़ा था, बैल थे, गाड़ी के चले जाते उधर, कुछ समय बाद पहुंच जाते अपने प्रियतम को मिलने के लिए। लेकिन नहीं, वो उनकी इच्छा नहीं थी। हर अवतार में भगवान ये लीला करते हैं। प्रभु रामचंद्र के अवतार में क्या हुआ, कुछ समय अयोध्या में रहे, सब अयोध्या वासियों को संग का आनंद दिया, फिर वनवास के रूप में चले गए। सारे अयोध्या वासी विरह और दुख के सागर में डूब गए। ये उनका लीला है, क्या चाहते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। फिर वो कृष्ण भगवान के रूप में आए, 10 साल रहे वृंदावन में, ब्रजवासियों को इतना आनंद दिया, इति दृक्ष्व लीला भीर आनंद कुंडे, सबको डुबा दिया आनंद के सागर में। हाँ, लेकिन फिर कंस के बहाने चले गए, 100 साल तक नहीं आए। फिर चैतन्य महाप्रभु जन्म लिया, कुछ साल 24 साल नवद्वीप में रहे, फिर संन्यास लेकर चले गए, नवद्वीप वासी दुख के सागर में डूब गए। क्यों करते ऐसे भगवान, क्योंकि वो हम सबको जो PhD ज्ञान है वो देना चाहते हैं। संग रहना मतलब ग्रेजुएशन है, लेकिन दूर रहकर जो प्रेम होता है वो संग रह के प्रेम करने से बहुत श्रेष्ठ होता है। उसको टेक्निकल भाषा में विप्रलंब कहते हैं, विरह कहते हैं। संग से अधिक सुख जो है प्रेमियों के जीवन में विरह में होता है, क्योंकि विरह में मिलन की आस होती है। और ये जो बहुत गहरा विषय है उसके लिए हम तो योग्य नहीं बोलने के लिए, लेकिन इस गहरे विषय की गहराई को समझने के लिए स्वयं कृष्ण आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसका आस्वादन करते हैं, इस प्रेम का। और वो प्रेम का स्रोत राधा रानी है। उस राधा तत्व के रहस्य को समझने के लिए स्वयं कृष्ण आते हैं। कितना महान होगा वो, क्या अंदाज लगा सकते हैं हम। बताया गया कि ये सोर्स है पूरा प्रेम का, लेकिन कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, इसकी था कहां तक पहुंची है कोई लगा सकता है उसका, स्वयं कृष्ण भी नहीं लगा सकते। क्योंकि ये प्रेम जो है कृष्ण राधा रानी का, ये नित्य नव नवायमान है, हमेशा के लिए बढ़ने वाला है, विस्तृत होने वाला है, विस्तार होने वाला है, कभी इसका अंत नहीं होगा। अथाह है ये, ना इसकी गहराई ना उसकी था किसी को मालूम हो सकती है, स्वयं उनको भी और कृष्ण को भी। पता नहीं होता है। क्या उसका प्रूफ है? समझो आप किसी बिरला को मिलेंगे, हाँ, वो बोलेंगे आपके पास कितनी वेल्थ है, तो बिरला भी नहीं बता पाएंगे उनके पास कितनी वेल्थ है, वो खुद गिनने लगेंगे। हाँ, अगर मैं आपको पूछूंगा आपके पास कितनी वेल्थ है, एक झट से आप बोल नहीं सकते, आपको सोचना पड़ेगा, अरे इधर भी है उधर भी है, अरे और भी घर में है, पूरा इवेल्युएट करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा उसका। तो एक साधारण जो धनी जीव है यहाँ का, दुनिया का, तुच्छ धन को प्राप्त करके गर्व करता है, वो भी अपने धन को बराबर नाप नहीं सकता है कितना धन है उसके पास। अभी भी आप मुझे पूछेंगे कि कितना पैसा मुंबई से लेके आए, मुझे तुरंत बताने को नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा विवेक के पास कितना है, मेरे पास कितना है, बेटी के पास कितना है। और भगवान जो अनंत धनी है, सर्व धन के वो स्रोत हैं, और उनके प्रेम करने वाले राजा रानी जो है वो अनंत प्रेम करने वाले, कितना प्रेम हो सकता है नहीं कह सकते, क्योंकि एक दूसरे को देखने से उनका प्रेम जो है अनंत बढ़ते रहता है, इनको देख के इनका बढ़ता है, उनको देख के उनका बढ़ता है, और इस तरह से अनंत काल तक वो, अनंत समय तक वो बढ़ते रहता है, नित्य वृद्धि होने वाला, इसलिए वो आध्यात्मिक है। इट इज ए स्पिरिचुअल वेल्थ जो हमेशा के लिए वृद्धि होती रहती है उसकी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो संदेश देते समय स्वयं अनुभव कर रहे हैं उस प्रेम के रहस्य को जो राधा रानी के पास से उनको प्राप्त हो रहा है, उसका राधा रानी बनकर वो उस भाव को अनुभव कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन का पीएचडी है। चैतन्य चरितामृत में ऐसे भक्तों का वर्णन है जो ऐसे प्रेम की परिसीमा पर पहुंच गए हैं, ऐसे भक्त कैसे व्यवहार करते हैं उनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। भगवत गीता शरणागति में समाप्त होती है और भागवत वहां शुरू होता है, और शरणागति के बाद में प्रेम क्या होता है उसका भागवत में वर्णन आता है, उसकी प्रेम की परिसीमा क्या होती है उसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र है और चैतन्य चरितामृत है। इसलिए ऐसे मत समझना कि अरे हम लोग हरे कृष्णा करते हैं, अरे जुहू के मंदिर में इसको बनाया होगा, इन मंत्रकों को मैन्युफैक्चर किया होगा और ऐसे ही नाच रहे हैं पागलों की तरह, ऐसा नहीं है, बहुत गहरी बात है। गौलोकेर प्रेम धन, जो प्रेम सर्वोच्च परि सर्वोपरि प्रेम जो गौलोक धाम में भगवान के प्रकट होता है, वो सार रूप में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हमारे पास आया है, और गौलोक धाम का और हर जीवन का सर्वोच्च आनंद है रास जो भगवान रचाते हैं अपने प्रेमी भक्तों के साथ में, वो रास में सर्वोच्च आनंद अपने भक्त को देते हैं, वही रास का जो आनंद है सर्वोच्च आनंद जो जीव को वांछित है, जीव उसकी इच्छा करते हैं, वो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हम तक पहुंचाया है। हम तो गोपियां हैं नहीं, ना हमारी योग्यता है समझने की उस भाव को, लेकिन वैसा न होते हुए भी आम जीव को, आम बद्ध जीव को इस दिव्य आनंद का अनुभव प्राप्त हो, इसलिए महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से उस सार के धन को हरे कृष्ण महामंत्र में इन्वेस्ट करके हम तक पहुंचाते हैं। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं तो उसी आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो गोपियां भगवान के साथ में बंसीवट में रास में रचाने समय अनुभव करती है। द सेम एसोटेरिक सुप्रीम हैप्पीनेस सुप्रीम ब्लिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल ऑफ अस इफ यू सिंपली डांस इन चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। ये हकीकत है, चैतन्य महाप्रभु को बताया गया था, अरे तुम सन्यासी हो तुम क्यों नाच कर रहे हो, नहीं नहीं मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि तुम नंबर वन मूर्ख हो, तुम्हारे लिए शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं है, तुम हरे कृष्ण मंत्र से ले लो और नाच करते रहो। फिर उन्होंने उन्हीं सब लोगों को ज्ञान दिया कि ये नित्य और ये हरे कृष्ण मंत्र क्या है। 60,000 शिष्यों के साथ में प्रकाश आनंद सरस्वती जो है उनके अनुयायी बन गए, जो बड़े ज्ञानी थे, उनको बोल रहे थे आप नाचते क्यों, तो सिंपल बना दिया। मैंने कैसे बताया आपको कुसुम सरोवर पे, जैसे युग जो है उसका पतन होते जाता है, युग का स्थिति घटते जाता है, वैसे भगवान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है और आसान हो जाती है, करुणावश प्रेमवश दयावश। तो अगर हम उनका लाभ नहीं लेंगे तो हम हमारा ज्यादा दुर्भाग्य किसका होगा, हु कैन बी मोर अनफॉर्चुनेट। कितना आसान करके, जैसे होता ना कटहर का फल होता ना, फणस बोलते हैं उसको, उसको कोई माँ हमारी हाथ को तेल लगाती है, फिर काटती है, फिर वो चीख निकलता है, फिर तेल लगाती है, फिर निकालती है, फिर उसका जो स्वीट है उसको निकालती है, फिर उसका बीज निकाल देती है, फिर उसको निकाल के काट के रखती है, फिर उस पर मधु डालती है और एक थाली में रखती है, आपके हाथ में लगे देती है। कोई कष्ट नहीं आपको कटहर को तोड़ने का, सब कष्ट निकाल के आपको रेडीमेड खाली अभी चबा के निकलना है उसको बस। नहीं नहीं वो थके हैं अभी कौन खाएगा इसको, तो क्या होगा, दुर्भाग्य का लक्षण है। रेडीमेड प्रभुपाद जी ने इसका सब सार जो है सभी शास्त्रों में से निकालकर अपने ग्रंथों में अनुवाद के रूप में, तात्पर्य के रूप में हमको रेडीमेड प्रस्तुत किया है। उस तात्पर्य में सब जगह का जो रेफरेंस है, संदर्भ दिया है, इस पुराण का, उस पुराण का, इस उपनिषद का, सारे मेहनत उन्होंने किया है और रेडीमेड एक एक विषय का सारा संदर्भ देकर उनके तात्पर्य बनाए हैं। मतलब पढ़ो अभी आप, नहीं प्रभु जी पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं, तो क्या कह सकते हैं, व्हाट एल्स कैन बी डन। हाँ, पूरा हमारा मेडिसिन होता है ना गोल वाला, टेक्स्ट बुक मेडिसिन गोल वाला, सारा मेडिसिन का छान मान करके पूरा पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 कॉजेस ऑफ दिस डिसीज 1 2 3 4 5 सिम्टम्स ऑफ दिस इज 1 2 3 4 5 10 5 6। नहीं पढ़ने को टाइम नहीं, तो जाके हैरिसन पढ़ो, बड़ा सागर में कूदो और ढूंढो क्या मिलता है। उसी तरह से प्रभुपाद की किताबें जो हैं वो सिनॉप्सिस हैं, सब जगह का सार जो है वो आपको आवश्यक है उतना ही निकाल के आपके अनुकूल, आपके समय के अनुकूल, आपकी स्थिति के अनुकूल उन्होंने बना के रेडीमेड दिया है, जो आपको जानना है बस। बाकी इस पेड़ में कितने पत्ते हैं जानने की जरूरत नहीं आपको, नो नीड, वो आपको कहीं उद्धार करने में लाभ नहीं होगा उसका, इस पर पेड़ में कितने पत्ते हैं पता करके। लेकिन आत्मा के उद्धार करने के लिए क्या आवश्यक है, उतना उन्होंने अपनी किताब में दिया है। उसी को पढ़ने के लिए ये बुद्धि है, कुत्ता बिल्ली के पास ये बुद्धि नहीं है। हमारे पास ये बुद्धि क्यों है, वो सारा सार जो है उन्होंने मेहनत करके बनाया हुआ है, वो समझने के लिए और जीवन में उतारने के लिए। नहीं तो मनुष्य बनने से क्या लाभ है। हाँ, कुत्ता बिल्ली भी आहार निद्रा भय मैथुन सब करते रहते हैं, हाँ भोजन के लिए झगड़ते रहते हैं, नर मादी को प्राप्त करने को झगड़ते रहते हैं, संकट आए तो रक्षा भी करते हैं, तो नींद आए तो सो जाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके लिए वो चींटी का जो दिमाग है वो भी काफ़ी है, और हाथी का दिमाग भी काफ़ी है, और शेर का भी काफ़ी है। मनुष्य का दिमाग क्यों दिया, इतना सुपर फाइन इंटेलिजेंस, ये सब समझने के लिए दिया है, आत्मा का उद्धार करने के लिए दिया है। तो हम श्री रावल धाम में बैठे हैं, जानते हैं कि विश्वभानु महाराज कंजभानु नाम के बड़े भक्त थे, और उनके पुत्र का नाम महीभानु है। महीभानु का विवाह जो है वो सुखदा से होता है, और महीभानु और सुखदा के पुत्र का नाम वृषभानु महाराज है। एक ही पुत्र नहीं है, 9 पुत्र हुए उनको। महाभानु, सत्यभानु, गुणभानु, धर्मभानु, रुचिभानु, वरभानु, सुभानु और रतिभानु, ऐसे 9 भाई हैं। अब भानु का अर्थ क्या है मैंने बताया आपको, किसी को याद है? हाँ, 12 लाख गाय मिनिमम जिनके पास है वो उनको भानु पदवी मिलती है, उसका नाम भानु हो सकता है। और नंद की क्या पदवी है, क्या व्याख्या है उसकी? 9 लाख मिनिमम होना चाहिए। तो इसके बीच के भाई जो हैं वो वृषभानु महाराज हैं। 4 बड़े हैं, 4 छोटे हैं। और वृषभानु का विवाह जो हुआ वो कीर्तिमती, सॉरी कीर्तिदा, उनके माता पिता का नाम है इंदुसेन और मुखारा देवी। मुखारा देवी का गांव राजा कुंड के पास में, कल गए थे ना हम लोग, उसके पास में मुखारा देवी का गांव है, राजा रानी की ननिहाल है वो। तो इंदुसेन और मुखारा देवी को 3-4 कन्या हुई, एक कीर्तिदा, एक भद्रकीर्ति, एक महाकीर्ति और एक चंद्रकीर्ति, और उसमें से एक है कीर्तिदा, उनका विवाह होता है वृषभानु महाराज से। और बड़े दिनों तक उनको संतान नहीं होती, केवल एक पुत्र है। तो वृषभानु महाराज नंद महाराज के बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती उनके अंदर, दोनों मिलकर सोचते हैं कि चलो आपको भी पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, हमें भी कन्या प्राप्ति नहीं हो रही है, हम जमुना किनारे जाके अपना बस्तान बसाएंगे। तो सब शिफ्ट होते हैं, नंदगांव से नंद महाराज गोकुल में, और वृषभानु महाराज बरसाना से रावल में आते हैं। ये जमुना किनारा है पूरा, अभी आपको नजर नहीं आ रही जमुना यहाँ पर, लेकिन ये पूरा जो रावल है, गोकुल है, रमन रेती है, ब्रह्मांड घाट है, वो सब जमुना किनारे में है। तो यहाँ पर आकर वृषभानु महाराज अपना राज्य बसाते हैं, बड़े धनी होते हैं वो, राधा रानी के पिताजी हैं वो, नंद महाराज से अधिक धनी है। तो एक दिन वो सवेरे जब उठते हैं, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी का दिन है, राजा है वो, अपना अपने सरोवर में स्नान करते हैं, उनका खुद का सरोवर है, तो स्नान करने को भोर के समय उठते हैं, बहुत सुंदर समय है। और गुरुवार का दिन था, अरुणोदय की बेला थी, विशाखा नक्षत्र था। उस दिन देवराज गोत्र वाले वृषभानु महाराज स्नान कर रहे हैं, तो अचानक उनको, रोज स्नान करते हैं, कोई अद्भुत चीज़ नहीं होती है, उस दिन उनको बड़ा दिव्य सुनहरा प्रकाश नजर आता है उनके सरोवर में, इतना प्रकाश कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आ रहा है। तो बड़े अचंभित होते हैं और पास जाते हैं, देखते हैं कि ये सुनहरा प्रकाश जो है एक कमल से आ रहा है। तो अनंत पंखुड़ी वाला सुनहरा प्रकाशमान दैदीप्यमान ऐसा कमल है, उसके बीच में से प्रकाश आ रहा है। और पास जाके देखते हैं तो वो प्रकाश कमल से नहीं आ रहा है, कमल में एक सुंदर कन्या है, वो हजारों सूर्य जैसी प्रकाश प्रकाशमान है, उस कन्या के शरीर से ये आभा आ रही है। बड़े आश्चर्य से आश्चर्य में भर पड़ रही है उनके, एक के बाद एक के बाद एक। उसमें आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपने 12,000 साल तक तप किया था पिछले जन्मों में, पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते खाकर व्रत किया था उन्होंने, ताकि भगवान की अंतरंगा शक्ति पुत्री के रूप में आपको प्राप्त हो जाए। याद दिलाते हैं ब्रह्मा जी, यही भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की प्रियतमा श्रीमती राधा रानी अभी आपके लिए बेटी के रूप में प्रस्तुत है, इसे आप घर ले जाइए और अपने बेटे के रूप में उसका लालन पालन कीजिए। वृषभानु महाराज बड़े खुश हो जाते हैं और कन्या को कमल से उठाकर घर ले आते हैं, कीर्ति मैया को दिखाते हैं, वो भी फूले नहीं समाती खुशी से। तो अलग अलग कलियुगों में, जैसे मैंने कहा आपको 999 कलियुग के बाद में जो कलियुग आता है उसमें महाप्रभु चैतन्य आते हैं, 999 द्वापर युग के बाद में 1000वें द्वापर में कृष्ण आते हैं, तो अनेक बार आते होंगे ना, पर एक ही बार आते हैं। तो जब जब अलग अलग बार आते हैं तो अलग अलग प्रकार से उनका आविर्भाव होता है। बरसाने में 2-3 जगह हैं जहाँ पर राजा रानी का आविर्भाव हुआ है, अलग अलग युगों में अलग अलग, उसको कल्प भेद कहते हैं। एक कल्प 1000 युगों का होता है, एक कल्प में एक बार भगवान आते हैं। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग तरीके से भगवान अवतरित होते हैं, कृष्ण भगवान भी राजा रानी भी। तो एक वहाँ जगह है भानुखर नाम की, वहाँ पर भी उनका जन्म हुआ है, वहाँ पर भी वो उनका जन्म का लीला है। एनीवेज तो घर जाते हैं, लेकिन उनको एक दुख होता है, बड़ी खुशी है कन्या प्राप्त हुई, बड़ी सुंदर है, उसके श्री अंग जो है इतने कोमल और इतने आकर्षक हैं, इतने मुलायम हैं कि आनंद से फूले नहीं समा रहे, फिर भी दुख हो रहा है उनको। क्यों? क्योंकि कन्या ना आँख खोल रही है, ना कोई मुँह से बोल रही है, ना कुछ सुन रही है, कुछ खिलौना हिला रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो अभी उत्सव मनाए तो कैसे मनाए, अंधी और गूंगी बेटे का उत्सव कैसे मनाए, दुविधा में है बड़े। कहीं जगह किस जगह पर नारद मुनि बैठे हुए हैं, अपना गणित कर रहे हैं, चार्ट बनाया उन्होंने और देख रहे हैं कि राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति कहाँ प्रकट हुई है। तो चार्ट बनाते हैं और बराबर उसका लोकेशन जो है वो ढूंढ लेते हैं और तुरंत आते हैं ब्रज में और रावल में आते हैं और यहाँ पर दस्तखत लगाते हैं, कोई कन्या का जन्म हुआ है यहाँ पर? बोलते कोई कन्या नहीं है। कोई संतान है तो सीधा माँ को आगे कर देते हैं, बोले सीधा माँ देखो ये हमारा एक लड़का है, कोई कन्या वन्या नहीं है। तो निराश हो जाते हैं, बोले मेरा गणित कैसे गलत हो गया, दोबारा गणित देखते हैं, नहीं नहीं इधर ही है। बोले माता तो ना बोल रही है। इतने में पिताजी और माताजी यानी कि वृषभानु महाराज और कीर्तिदा अपने आप में चर्चा करते हैं, अरे हमने तो साधु महाराज को झूठ बोल दिया, लेकिन हो सकता है इनकी कृपा से ही कुछ जादू हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, तो क्यों ना उसका लाभ ले। जाओ 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 सखियों जाओ उनको बुलाओ। तो नारद मुनि नाराज होकर जा रहे हैं, दुखी होकर उनको दोबारा बुलाते हैं, है कन्या है आ जाओ, ऐ भाग भाग के आते हैं। देख कन्या का जन्म हुआ, लेकिन समस्या यह है कि वो गूंगी बहरी और अंधी भी है। नारद मुनि पहले दंडवत प्रणाम करते हैं भाव विभोर होकर के, हाँ यही है, और तुरंत उनको बोलते कोई बात नहीं, मैं आपको उपाय बताऊंगा, बड़ा उत्सव मनाइए आप और उसकी बड़ी लिस्ट बनाते हैं, ऐसे बनाइए, ये लाइए, वो लाइए, ये वस्तु होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और एक बात जरूर होनी चाहिए, नंद गोकुल से नंद महाराज, यशोदा मैया और कृष्ण बलराम को जरूर बुलाना, ये मत भूलना। जाओ 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 सब लोग तैयारी करो, और सबको भगा देते हैं क्योंकि उनको अकेले में राधा रानी का दर्शन करने की इच्छा होती है। राधा रानी जैसे ही सब लोग निकल जाते हैं, वो 16 वर्षीय कन्या बनकर प्रकट हो जाती है उनके सामने और दर्शन देती है। नारद मुनि बेहोश हो जाते हैं, दंडवत करते हैं, बार बार उठते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, रोमांच खड़े होते हैं, कंठ से गदगद हो जाते हैं और आनंद व्यक्त करते हैं राधा रानी के दर्शन करने का। फिर वो कहते हैं कि आप मुझे अष्ट सखियों के साथ दर्शन दीजिए। तो राधा रानी कहती है आप कुसुम सरोवर चले जाओ, मैंने आपको वो कहानी कल बताई नहीं। वो तो कुसुम सरोवर पहुंचते हैं राधा नारद मुनि, कैसे पहुंचते हैं, नाचते नाचते कूद रहे हैं, कोलांटी उड़ी बोलते ना उसको, क्या समर सॉल्ट ऐसे करके रोल होते होते हवा हवा में जमीन में ऐसे करते करते वहां पहुंच जाते हैं। दक्षिण किनारे में कुसुम सरोवर पे उनको माधवी गोपी मिलती है, उनका हाथ पकड़ती है और उनको दक्षिण किनारे में कुसुम सरोवर में स्नान कराती है। स्नान करने से तुरंत नारद जी ही नारदीय गोपी बन जाते हैं। हाँ, आपने कहानी सुनी ना कंसनी गोपी की, वो तो जबरदस्ती बने थे, बहुत दुखी थे वो, नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, कह रहे हम गोपी बन गए, क्योंकि गोपियों के बीच में पुरुष को प्रवेश नहीं है, केवल एक ही पुरुष वहां पर है, वो श्री कृष्ण है। उसका श्रृंगार करते हैं नारदीय गोपी का, हाथ पकड़ के माधवी गोपी उनको कुसुम सरोवर के मध्य में ले जाते हैं, जहां पर रत्न का सिंहासन है जो हमारे नजरों से ओझल है, उसके सब सखियां खड़ी हैं, कमल के बीच में राधा कृष्ण विराजमान है, आठ पंखुड़ियों में आठ सखियां अपनी अपनी सेवा कर रही हैं, माधवी गोपी हाथ से पकड़कर उन हजारों गोपियों के बीच में से नारदीय गोपी को बीच में ले जाती है कृष्ण और राधा रानी के पास, और अष्टसखियों का दर्शन होता है। नारद मुनि चामर करते हैं, दोनों की सेवा करते हैं, भाव विभोर होकर चामर सेवा करते हैं, उनको निहारते हैं उनके दिव्य रूप को, और फिर नारद मुनि को नारदीय गोपी को लेकर माधवी गोपी दक्षिण किनारे में आती है, उनको दोबारा स्नान करवाती है, फिर वो नारद मुनि बन जाते हैं, फिर श्रृंगार से विमुक्त होकर चले जाते हैं, फिर नारद कुंड में ही निवास करते हैं, और वहीं राधा रानी के आदेश से नारद पंचरात्रिका का लेखन करते हैं, भगवान के विग्रहों का कैसे पूजन किया जाता है उसका विधि लिखते हैं। जब आदेश मिलता है तो नारद मुनि पूछते हैं, मुझे तो शाप मिला है दक्ष राजा की तरफ से कि 3 दिन से अधिक मैं कहीं रह नहीं पाऊंगा। बोले वो शाप भौतिक जगत में है, ये मेरा घर है, दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये त्रिगुणातीत धाम है मेरा, दिव्य धाम है, वो शाप यहाँ पर लागू नहीं, आप जितना चाहिए उतना दिन रहिए और ये सेवा पूरी कीजिए। नारद मुनि नृत्य करते हुए पहुँचते हैं और वहाँ पर निवास करते हैं कुसुम सरोवर के सामने नारद वन में, वहाँ पर नारद कुंड भी है। एनीवेज यहाँ पर फिर सब लोग गए तैयारी करने के लिए, सब तैयारी करने लगते हैं और बड़ा उत्सव होता है, बहुत सुंदर बधाई उत्सव होता है राधा रानी के जन्म का, राधा रानी पलने में झूल रही हैं और सब लोग खुशियां मना रहे हैं, सब गोपियां सज धज के अलंकार पहन के, सुंदर रंग बिरंगी वस्त्र पहन के, फूल पहन के, अलंकार पहन के, अपने आप को सजा के भाग रही हैं। ऐसा वर्णन आता है कि उनका स्थूल शरीर जो है उनको जल्दी भागने में उनको कष्ट हो रहा है, फिर भी वो प्रयत्न कर रहे हैं, बड़ी गोपियां हैं ना, बुजुर्ग गोपियां, भेंट वस्तु अलंकार और उपहार लेकर भाग रहे हैं विश्वानु महाराज के महल में, और वहां पर सब लोग खुशियां मना रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, कुछ मक्खन फेंक रहे हैं, कुछ सुगंधी जल फेंक रहे हैं, चंदन अगुरु से उनका स्वागत किया जा रहा है, और इतने में सब लोग जैसे कि नंद महाराज आते हैं, यशोदा मैया आते हैं, सब लोगों का स्वागत करते हैं, आईना दिखाते हैं, अलंकार देते हैं, चंदन लगाते हैं, अतित्र लगाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, दंडवत करते हैं, गले मिलते हैं, सब करके वो बैठते हैं, मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। उतने में कृष्ण और बलराम जो है अपने अपने खेलने में लग जाते हैं, छोटे छोटे बालक हैं रेंगते हुए, तो कृष्ण भगवान जो है राधा रानी के पलने की ओर चले जाते हैं। और आपने देखा है ना कि बालक जब जिसको खड़ा होने को नहीं आता है तो कैसे खड़ा होता है, वो किसी को पकड़ता है, किसी का पैंट पकड़ता है या किसी टेबल का हिस्सा पकड़ता है, किसी चीज़ को पकड़ता है, वो खड़े हो जाता है। जैसे रेंगते हुए बालक कृष्ण जो है वो रेंगते हुए पलने के बाद जाके पलने को पकड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं, एक हाथ से पलने को पकड़ते हैं, एक हाथ से राधा रानी को हाथ लगाते हैं। जैसे ही राधा रानी को हाथ लगाते हैं, राधा रानी तुरंत प्रेम से किल्लोल करती है, बोलो जय जय श्री राधे श्याम। क्योंकि जब उनका संवाद हुआ था गौलोक धाम में कि हे सखी अभी पृथ्वी पर जाने का समय हो गया है अवतार लेने का, तो वो कहते हैं कि हम नहीं आएंगे, जहाँ पर वृंदावन धाम गोवर्धन और जमुना जी नहीं है वहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, नहीं नहीं हे प्रिय सखे, आपके लिए हमने वृंदावन धाम का हिस्सा जमुना जी और गोवर्धन के साथ में प्रकट करा दिया है पृथ्वी पर, और एक हमारी कंडीशन है, आपके बिना हम ना किसी को सुनेंगे, ना किसी से बात करेंगे, ना किसी का दर्शन करेंगे। इसी रहस्य की वजह से उनकी आंखें कान और मुंह बंद था, और सबसे पहले उनको श्री कृष्ण भगवान के दिव्य मुख कमल का दर्शन करने की अभिलाषा थी। ऐसे कहा गया है कि उन्होंने हाथ स्पर्श करने के पहले ही उनके अस्तित्व के सुगंध के प्रभाव से ही वो किल्लोल करने लगी। हमको सबको पता होना चाहिए जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां पर अनंत, मतलब कैसे वर्णन करें उसका, दिव्य सुगंध सब आसमान में छा जाता है, राधा रानी कृष्ण भगवान। कई शास्त्र में से वर्णन है जहां पर भगवान ने दर्शन दिया, जैसे कि विष्णु भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया, सब जगह सुगंध हो गया, पहले ही भगवान के आगमन का संदेश आ गया कि भगवान आ गए हैं। तो भगवान का जो अस्तित्व है वो दिव्य है। जैसे जानवा देवी नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है एक बार बेहोश हो चुकी थी, तो जैसे नित्यानंद प्रभु को बुलाया गया तो बेहोशी थी वो। नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार है, नित्यानंद प्रभु वहां पर आए तो उनके आने से ही उनका जो सुगंध है उनके शरीर का दिव्य, उसी से वो बेहोशी से उठ गई और संकोच से भाग गई अंदर। तो दिव्य जो पुरुष होते हैं, दिव्य दर्शन होता है तो ये सुगंध आभा प्रकट होती है। राधा रानी ने फिर आंखें खोली और अपने प्रियतम का दर्शन किया। हमारी भी आंखें उसी के लिए बनाई गई, याद रखना, दुनिया की चमकती वस्तुओं को देखने के लिए नहीं बनाई है। हमारी आंखें का पर्पज जो है, उद्देश्य है, वो उनका दर्शन करने के लिए। हमारी आंखों का विषय है भगवान का स्वरूप, हमारी नेत्रों का पर्पज निर्माण करने का वो है उनका दर्शन। हम लोग बरसाने में ऑपरेशन करते हैं, हाँ हमारे बॉम्बे में करते हैं ऑपरेशन, तो क्या होता है तुरंत टीवी में आज सीरियल था वो कई महीने से मैंने देखा नहीं, उसको ऑन कर देते हैं, अरे देख लो अभी आंखें अच्छी हो गई है, अरे वो मूवी तो मैंने कितने दिन से मिस हो गया मेरा, 50 हफ्ते भी हो गए उसके, गोल्डन जुबली अभी भी देखना ही चाहिए, तुरंत भागते हैं उसके लिए। बरसाने में क्या करते लोग, अरे मैंने इतने दिन से भागवत नहीं पढ़ा, दिखाई नहीं पड़ता है, इतने दिन श्री जी के मंदिर दर्शन नहीं किया, चलो दर्शन होते ही आंखों को ऑपरेशन होते ही पहले जाके श्री जी के मंदिर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पट्टी खोलते हैं उनको श्री कृष्ण का चित्रपट दिखा देते हैं, अब पूछते हैं बांसुरी कहाँ है, दिखाते ये बांसुरी है, मोरपंख कहाँ है, हाँ ये मोरपंख है। ये नेत्रों का उद्देश्य है, जब नेत्र अपने सही विषय उनका जो है भगवान का स्वरूप उसमें मग्न हो जाते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। हमारे गोसाई हैं राधेश लाल जी गोस्वामी महाराज, बताते हैं कि ठाकुर जी का श्रृंगार हम क्यों करते हैं, श्रृंगार का गौरव बढ़ता है उससे, ठाकुर जी का नहीं बढ़ता है, ठाकुर जी के अंग स्पर्श होने से श्रृंगार का गौरव बढ़ता है, श्रृंगार जो है वो प्रकाशमान होता है। कल बताया ना कथा में आपको, श्रृंगार उतार दिया तो वो तो निस्तेज लग रहा है, ठाकुर जी और चमक रहे हैं। तो कहते हैं कि हमारी जो नजर है वो हमारा हमेशा भौतिक बद्धता से बंधी हुई है, हमको जब लिपस्टिक लगाए तो हमारे ओठ अच्छे दिखते हैं, हाँ जब काजल लगाए तो हमारी आंखें अच्छी दिखती है, जब कुछ गहने पहनेंगे तो हम अच्छे दिखते हैं, ये हमारा कंसेप्शन है। तो जब वो ठाकुर जी को अलंकार पहनाते हैं तो ये इच्छा उनकी होती है कि किसी अलंकार के बहाने आपका मन उनमें अटक जाए और वो अलंकार जो उनके हाथ में है, बाजू में है, कहीं गले में है, आपको बम्बई में याद आएगा तो आपका जीवन धन्य हो गया, इसलिए उनका प्रेम से श्रृंगार करते हैं। अलंकारों से उनको और शोभा देने के लिए नहीं, शोभा तो उनकी खुद की है, उनके द्वारा ही सभी वस्तुओं को शोभा प्राप्त होती है। तो ऐसी राधा रानी हमको अपने जन्म से ही दिखा रही है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन में, लक्ष्य एक ही है श्री कृष्ण, एकमात्र लक्ष्य जीवन में है एक भगवान, जिनकी वजह से हमारा सारा कल्याण हो सकता है, सारा दुर्भाग्य सारी अशुभता नष्ट हो सकती है अगर हम उनके चरणों में अपने जीवन को अर्पण करेंगे। तो इस तरह से राधा रानी यहाँ पर जन्म लेती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, राधा रानी का जन्म जो है वो भाद्रपद शुक्ला अष्टमी में हुआ है ना, उसी 15 दिन के अंदर सभी सखियों का, उनके जो महासखियां हैं परम श्रेष्ठ सखियां हैं उनका भी जन्म हुआ है, उसी भाद्रपद महीने के प्रथम पक्ष के तृतीया में तुंग विद्या का जन्म हुआ है, षष्ठी में ललिता का जन्म हुआ, जो हम कहते हैं ना ललिता षट बोलते हैं उसको, ललिता षष्ठी कहते हैं। अष्टमी को केवल राधा रानी का जन्म नहीं हुआ है, अष्टमी को राधा रानी, विशाखा देवी और चंपकलता देवी, इन तीनों का जन्म एक ही दिन में हुआ है, और दशमी में चित्रा सखी का जन्म हुआ है, एकादशी को इंद्रलोखा का जन्म हुआ है, और द्वादशी को ट्विन सिस्टर्स रंगदेवी और सुदेवी इनका जन्म हुआ है। इस तरह से राधा रानी का गोत्र देवराज गोत्र है और अरुणोदय के बेला में उनका जन्म हुआ है। इस तरह से राधा रानी को यहाँ पर हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हमारे जीवन में कोई शुभता नहीं आ सकती है, कोई शुभ नहीं हो सकता है। जो भी भक्ति हमारे लिए वांछित है, हम चाहते हैं उसको, वो उन्हीं की तरफ से आती है। इसे प्रभु जी ने बताया कि हम राइट सोर्स पे आए हैं। एक सबसे बड़ा बैंक होता है और बहुत सारे बैंक भी होते हैं जो उस बैंक के आदेश पे चलती है, उसके नियमावली के अनुसार, और एक बैंक होती है ओरिजिनल बैंक, तो सब बैंक उस पर निर्भर रहती है, ये ओरिजिनल बैंक है, यहाँ पर हमें याचना करनी चाहिए। मनुष्य होने के नाते हमको हमेशा सर्वोच्च वस्तु का खोज करना चाहिए, दैट इज ह्यूमन बीइंग, द टॉप मोस्ट थिंग किसी भी अलग लेवल की चीज में हमको समाधान नहीं मानना चाहिए। जब तक सर्वोच्च वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमको शांत रहना चाहिए। तो ये सर्वोच्च वस्तु है श्रीमती राधा रानी, इनका प्रेम, इनका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ कुछ आपको बताऊंगा मैं उनके नाम का महात्म्य क्या है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसमें हरा जो है वो राधा रानी है, और ये राधा रानी का नाम इतना शक्तिशाली है कि राधा कहते ही ऐसे कहते हैं माधव जो है वो क्या कहते हैं उसको मोहित हो जाते हैं, ही बिकम्स बिविल्डर्ड कंप्लीटली, सम्मोहित हो जाते हैं। इसका एक श्लोक है सुंदर, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। रा शब्द उच्चारण देवस्पीतो भवति माधव, जो माधव यानी कि कृष्ण भगवान जो है वो पागल से हो जाते हैं, और धा कहते ही वो उस नाम के उच्चारण करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे आने लगते हैं कि कौन मेरे प्रियतमा का नाम पुकार रहा है। और एक इसका श्लोक है पुराणों में, वो ये है कि रा शब्द उच्चारण करते ही अनंत कोटि जन्मों के जितने पाप है, संचित है, बीज है, कूट है, प्रारब्ध अप्रारब्ध सब नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि गर्भवास, पुनर्जन्मवास सब खत्म हो जाता है। और धा शब्द उच्चारण करते ही राधा रानी तुरंत हम पर प्रेम भक्ति का वर्षाव करते हैं, और धा शब्द उच्चारण करते ही प्रेम भक्ति जिसके लिए हम करते हैं वो उसके पीछे भागने के बजाय हमारे पीछे भागने लगते हैं। जैसे मैंने आपको मोर की कहानी बताई ना, क्या उसमें सीक्रेट क्या था? सीक्रेट वो नंदगांव गए, उन्होंने राधे राधे पुकारा, तो फिर कृष्ण भगवान भाग भाग के आए, उस मोर को अपने गोद में लिया, दुलारा उसको, वो अति आनंद में उसके पंख झड़ गए, भगवान ने उसको उठाया और अपने सर पे धारण कर लिया, उस भाव को धारण किया जिस भाव से मोर ने भगवान की शरण ली थी। तो हमें भी सब दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है वो कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं, तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान मतलब ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, क्या क्या मेहनत कर रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए। लेकिन ऐसे कहा गया है कि ऐसे ध्यानी तपी जपी जितने भी लोग हैं अनंत काल तक जन्म जन्मांतर तक भजन करते रहते हैं, उनको भगवान के पैरों के 10 नाखूनों से निकलने वाले अनंत किरण जो है उसमें से एक किरण भी नजर नहीं आता है। लेकिन जो राधा रानी की शरण लेता है उसके अधीन भगवान हो जाते हैं, राधा रानी स्वयं उनके वो अधीन है। और जिनको भी वो कहते हैं, राधा रानी कहती है कि ये भक्त बड़ा अच्छा है, उसकी सिफारिश करते हैं, तुरंत भगवान ऊपर कृपा कर देते हैं। भगवान को आप पर इंडिपेंडेंट अगर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि अनंत करोड़ जन्मों तक आपको वो देखे भी नहीं, आप बहुत सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर राधा रानी को आप प्रसन्न करते हैं और वो सिफारिश करती हैं तो उसी समय आप पर कृपा हो जाती है। राधा रानी की महिमा ये है। और उनको कैसे प्रसन्न करें? उनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। जो कृष्ण के भक्त हैं, जो उनकी शरण ले चुके हैं, उनकी सेवा करने से वो तुरंत प्रसन्न हो जाती है। इसलिए हम बरसाने में कैंप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि बरसाना में वो लोग जन्म लेते हैं, पूरे ब्रज के अंदर भी बरसाना है, जो राधा रानी को अति प्रिय हैं। उनको राधा रानी एकदम गरीब रखती है, अज्ञानी रखती है, अनपढ़ रखती है, शरीर से कुरूप रखती है, हर तरह से जिन जिन वस्तुओं से गर्व हो सकता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर, ऊंचा जन्म, ऊंचे कुल में, बड़ा ज्ञान हो रहा है आपको, सुंदर शरीर है, हाँ बहुत धन है हमारे पास, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत प्रभाव है हमारा, इन चीज़ों से गर्व उत्पन्न होता है, अहम उत्पन्न होता है। और वो उत्पन्न होते ही राधा कृष्ण से हम दूर चले जाते हैं, ये अहम जो है भगवान से बड़ा दूर कर देते हैं हमको। इसलिए वो लोग जो राधा रानी को प्रिय है उनको वो खास बरसाने में जन्म देती है और इन सब चीज़ों से मुक्त रखती है ताकि वो हमेशा नम्र रहे और राधा रानी के चरणों में रहे। और उनके लिए कोई कमी नहीं है, सर्व सम्राज्ञी जो है राधा रानी उनके धाम में रह रहे हों, लेकिन बाहरी दृष्टि से उनको कैटरैक्ट है, उनको कुछ बीमारी है, तो वो हमको सेवा करने का मौका देती है। और जिस दिन हम उन ब्रजवासियों को सेवा करके प्रसन्न करते हैं और खुशी से हमारे ओर देखकर वो स्मित हास्य करते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो राधा कृष्ण स्वयं आपको देखकर हंस रहे हैं, प्रसन्न होकर हंस रहे हैं। और बरसाने के अंदर या ब्रज के अंदर आप ब्रजवासियों को सेवा करके प्रसन्न करते हैं, उसी दिन राधा रानी आपके बारे में श्री कृष्ण को सिफारिश करती हैं। सच ए बिग फॉर्चून, हाँ तो इसलिए हम लोग यहां पर आए, सेवा करने के लिए आए। पहले धाम की सेवा करेंगे, दर्शन करके, श्रवण करके, और ये अभिलाषा करेंगे कि हमको धाम में भी सेवा दो। बहुत लोग धाम में आते, दर्शन करके चले जाते हैं। हम लोग यहाँ की सेवा चाहते हैं, और भगवान की दया से वो मिली भी है। उसको अच्छी तरह से, अच्छी भावना से करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो उसमें धन जोड़ना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए, कुछ प्लानिंग करना चाहिए। जो भी सेवा कर सकते हैं, सेवा करने वाले की सेवा कर सकते हैं। एक बात बताना मैं भूल गया कि राधा रानी के जन्म बधाई के ऊपर क्या क्या हुआ। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो वृषभानु महाराज बहुत खुश हो गए ना, उन्होंने आंखें भी खोल दी। अभी उस दिन उत्सव के समय तो उन्हें भंडार खोल दिया अपने, उनके पास इतना अनंत भंडार है। ऐसे कहा कि राधा रानी का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन जो सबसे गरीब आदमी था एकदम धनवान बन गया, और जो सुखी रोटी खाता था वो हलवा पूरी खाने लगा, अचानक उस घर में प्रकट हो गए। हाँ, क्योंकि वो अन्नपूर्णा देवी जो है उनका भी स्रोत राधा रानी है। तो राधा रानी के प्रकट होते ही सब जगह समृद्धि छा गई, खुशियां, आनंद, समृद्धि, हर प्रकार का ऐश्वर्य प्रकट हो गया। तो विश्वान महाराज ने बड़े दिल से सब भंडार खोल दिए, हीरो का भंडार खोल दिया, सब साधु जितने भी आए सब लोगों को दे दिया उन दक्षिणा में। और वो बड़े बड़े देखकर उनको सराहते हुए जा रहे हैं, और रास्ते में सुनते हैं अरे अभी तो उन्होंने मोतियों का भंडार खोल दिया है। तो डालते हीरे वहीं और भागते दोबारा, तो मोतियां लेते हैं, मोती लेते हैं, सबको मोतियां बांट देते हैं। और मोती लेकर जा रहे हैं, थोड़ी अंतर आगे आके देखते हैं तो अरे अभी तो वो क्या कहते हैं उसको, पाचू, हाँ व्हाट इज इट कॉल्ड इन इंग्लिश, एमरल्ड, उसका भंडार खोल रहे हैं। इस तरह से सारे भंडार खोलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नवरत्न का भंडार। और जब तक लास्ट भंडार खोलते हैं तो 8 भंडार खोल के उसका सारा सामान जो है सब पृथ्वी पर भरा हुआ है, सब जगह पर हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। और भाग रहे लोग यहां से वहां और लेने के लिए, और उनका दर्शन करने के लिए पार्वती जी आई हैं, सरस्वती आई हैं। लेकिन वो थोड़ी ऐसा ऐश्वर्य लेके आएंगी, राजा रानी जो हमारी मालकिन है उनको अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए नहीं। कोई फूल बेचने वाली बनकर आई है, कोई झाड़ू वाली बनकर आई है, कोई चंदन लेकर आई है, कोई चूड़िया बेचने के बहाने से आई है। हाँ, ऐसे अलग अलग रूप धारण करके सभी देवी देवता जो है प्रकट होते हैं वहां पर राजा रानी का दर्शन करने के लिए। क्योंकि दिव्य धाम में तो उनका दर्शन बाल रूप का नहीं होता है, यहाँ वो बाल रूप में दर्शन देती है, बालिका बनकर। यहाँ पर देखो फोटोग्राफ है मंदिर के ऊपर, हाँ, राधा रानी रेंग रही है ऐसे, बेबी नवकिशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में आवे हैं, हाँ, छोटी छोटी रेंगती हुई। तो ऐसा ऐश्वर्य, उसकी बधाइयां ब्रजवासी लोग आते हैं कि कैसा आनंद हुआ वृषभानु के महल में, कैसी बधाइयां बज रही हैं। सभी गंधर्व या किम पुरुष यक्ष सभी लोग आते हैं वेश बदल कर, कोई गा रहे, कोई नृत्य कर रहे, कोई वाद्य बजा रहे हैं, कोई और संगीत के उच्च कलाओं को प्रकट कर रहे हैं राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। लोगों को लग रहा है कि हम वाद्य बजा रहे हैं, ब्रजवासी लोग कह रहे हैं हम बजा रहे हैं, लेकिन आसमान से दिव्य ध्वनि नृत्य की, वायन की, वादन की आ रही है। सब देवता लोग सहायता कर रहे हैं उसके अंदर। इस तरह से ये बहुत दिव्य महारोह जो समारोह जो है वो संपन्न होता है। और राधा रानी, मैं आपको उनके नाम का महत्व बता रहा था, तो ये जो ऐश्वर्य जीवन का, वो ऐश्वर्य केवल भक्ति का है, बाकी सारा ऐश्वर्य जो है वो छूटने वाला है। कितना भी हम उस पर गर्व करेंगे, कितना भी उसको पकड़ के रखेंगे, तो वो हमको जबरदस्ती छूटने वाला है हमारे हाथ से। मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और उसमें क्या बचेगा, जो आत्मा के स्तर पर इकट्ठा किया है वही हमारे आत्मा के साथ जाएगा। और आत्मा के साथ अगर राधा रानी की कृपा होगी, नाम के प्रति आकर्षण होगा, सेवा के प्रति रुचि होगी, तो उस धन के बल पर हम उनके चरणों की ओर प्रगति कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का सार है। तो बाकी जीवन में क्या है, किस चीज पर गर्व कर सकते हैं हम? आज है तो कल नहीं है, आज सुंदर है तो कल कुरूप है, हाँ, आज स्वस्थ है तो कल कैंसर है, आज काले है तो कल सफेद हो जाएंगे। क्या बचेगा बताइए, किस चीज पर हम गर्व कर सकते हैं, किस चीज को अपना कह सकते हैं? कोई अपना नहीं है, एक ही व्यक्ति अपना है, वो है श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी। वही सबसे बड़े सुहृद है हमारे, सबसे बड़े हितचिंतक हैं, सबसे बड़े प्रेमी हमारे पर, सबसे अधिक हितचिंतक हमारे केवल राधा और कृष्ण है। उनके ही चरणों के प्रति हमारी विचारधारा, हमारी मति, हमारा धन, हमारा ऐश्वर्य, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां अर्पण करना ही हमारे जीवन का परिपूर्णता है। तो आप सब लोग यहाँ पर राधा रानी के लिए प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कीजिए। हाँ, हमको लगता होगा हमारे पास भी कुछ धन बम्बई में है, लेकिन प्रभु जी ने बताया तो आपको बैंकरप्ट बनना है, दिवाड़खोर। वो दिवाड़खोर मतलब क्या, स्पिरिचुअल। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर एम्प्टी है, बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ पर गर्व कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो चाहिए वो नहीं है। वो जो बैंक्रप्सी है वो यहां पर प्रकट करनी है, नम्र होकर, छुप छुप कर कोई बात नहीं, अकेले में बोलना कि हम ऐसे ही हैं, सबको मत बोलना, उनको जाके बोलना कि हम आपके लिए लाचार होकर आपके चरणों में आए हैं, आप ही हमें बचा सकती है। राधा रानी क्या नहीं करती, थोड़े से प्रार्थना से वो प्रभावित हो जाती है, थोड़े से प्रार्थना से, इतनी प्रिय है कृष्ण को वो कि राधा सुधा दिनी में एक श्लोक है, पहला ही श्लोक है, वो श्लोक ऐसा है कि श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के ऊपर के वस्त्र को छूकर हवा जिस दिशा से आती है उस दिशा को प्रणाम करते हैं। अभी तक वो ऊपर का वस्त्र बहुत दूर है उनसे, हवा जिस दिशा से आती है उनके ऊपर के वस्त्र को स्पर्श करके परावर्तित होकर जिस दिशा से आती है उस दिशा को वो प्रणाम करते हैं, इतना राधा रानी को वो मानते हैं और प्रेम करते हैं उनके ऊपर। तो राधा रानी से हम कल राधा कुंड गए थे, ये बहुत पावरफुल जगह है जहां पर राधा रानी बहुत अति 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 दयालु होती है, केवल दीनता उनको आकर्षित करती है, बाकी आपके पास कुछ योग्यता हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सरलता और दीनता है उनके पास तो तुरंत राधा रानी आप पर कृपा करेगी। इसलिए हम पुकारते हैं कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन, हे देवी, हे दया की देवी, कब कृपा करेगी, कब आपकी कृपा की दृष्टि मुझ पर गिरेगी, कब मेरा उद्धार होगा। इसी प्रार्थना को लेकर गुरु महाराज कहते हैं कि हमेशा श्री ब्रज में हमको पगलों की तरह घूमना चाहिए, इसी प्रार्थना को लेकर, हे महारानी कब आप हम पर कृपा करेंगी, कब आपका दास बनाएंगे, कब आपकी सेवा में रखेंगे, कब श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आपकी कृपा दृष्टि से हमको प्राप्त होगी, इसी करुण याचना करने के लिए हम लोग यहां पर आए, करुणामयी करुणा करो, दयामयी दया करो, ऐसी पुकार लगाने के लिए, टेर लगाने के लिए हम लोग आए हैं। इनको टेर लगाने के लिए शिव जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, स्वयं कृष्ण आते हैं, मैं आपको कल बताया था बरसाना में, सभी जो लोग बड़े बड़े हैं जिनको हम पूजते हैं वो सब लोग इनके दरबार में हाजिर लगाने आते हैं और पुकारते हैं उनको। शिव जी आए थे बरसाने में और वहां पर एक सरोवर है उसका नाम है बिहार कुंड, उसको कहते हैं माहेश्वरीश्वर, वहां पर देवी का निवास है दुर्गा देवी का, तो दुर्गा देवी के केवल होने से वहां पर वो कुंड भी स्वर्णमय हो जाता है। उस कुंड में नहाने के लिए शिव जी आते हैं और शिव गोपी बन जाते हैं और अपने आप श्रृंगार कर रहे हैं अपने आप का गोपी बनकर, तो पार्वती देवी उनको हंसती हैं, अरे आपको क्या पता है नायिका कैसे श्रृंगार करती है, हाँ लाओ हम आपका श्रृंगार करते हैं, इसलिए शिव जी का श्रृंगार करती हैं वो, और सज धज कर गोपी बनकर शिव जी फिर श्री जी के महल में पुकार लगाने जाते हैं, बोले अब जाओ और पुकारो महारानी को। तो राधा रानी की कृपा से ही शिव जी और दुर्गा देवी इनको ब्रज का वास प्राप्त हुआ है। राधा रानी ने स्वयं उनको त्रैमासिक व्रत दिया था जिसका ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन दिया गया है, सौगंधिका फूलों से उन्होंने इनका व्रत पूरा किया था। हाँ, सौगंधिका जो सरोवर है वो तो हिमालय के अंदर है, जो जिसका फूल देखकर भीम को द्रौपदी ने भेज दिया था हिमालय में, जाओ उसको ढूंढ के लाओ मुझे चाहिए और एक फूल, वो सौगंधिका फूलों का जो सरोवर है उसमें अपने गणों को यानी कि गणपति के गणों को, शिव जी के जो जितने भी गण हैं सब लोगों को लगाकर उस सरोवर में हजारों हजारों, एक फूल हजार पंखुड़े का होता है, कमल का सुनहरे रंग का होता है प्रकाशमान, ऐसे फूलों से राधा रानी का प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी दुर्गा देवी ने व्रत किया था शिव जी के आश्रय से। जब वो त्रैमासिक व्रत पूरा हुआ तो राधा रानी ने उनको दर्शन दिया है और उसके वजह से उन्होंने उनको दोनों को ब्रज में निवास दिया है। अन्य किसी देवताओं को ब्रज में निवास नहीं है, केवल काम्यवन में गणेश जी को निवास दिया है, उसकी लंबी कथा है कभी और बताएंगे आप, और ब्रज में कोई देवता नहीं आते हैं, केवल काम करके निकल जाते हैं, हाँ बधाई देने को आए चलो निकलो अपने अपने काम के चले जाओ, यहाँ रुकने का कोई काम नहीं है, उनका घर है थोड़ी वो सबको अपने घर पर रखेंगे, हाँ ऑफिस के 350 कर्मचारी सब घर में रहने लगे कैसे चलेगा, नहीं उनको बाहर रुकाते हैं, मंडप डालते हैं, बोले इधर खाना खाओ और चले जाओ, बाकी कुछ कुछ लोग अंदर आते हैं और अंदर खाना खाते हैं। उसी तरह से भगवान के धाम में केवल प्रेमी भक्तों को प्रवेश मिलता है, बाकी ऐश्वर्य वाले गर्व वाले सब लोगों को बाहर कर देते हैं, वो कोई प्रवेश नहीं उनका। तो इस तरह से राधा रानी का गौरव क्या करें, क्या योग्य है उसके करने के लिए, लेकिन समझ सकते हैं कि हमारा काम यहाँ हो सकता है, इतना भी समझ में आएगा तो जीवन धन्य हो सकता है। तो आइए हम सब मिलकर अभी कुछ समय के लिए यहाँ बैठेंगे 5 मिनट के लिए, और हृदय की व्यथा जो है, बोली वो दुखे रे व्यथा, हमारा जीवन का जो सच्चा स्टोरी है, हाँ ऐसा नहीं हाउ आर यू, अरे सुपर फाइन, वेरी फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, वो सब दुनिया को फोन पे बताने के लिए होता है। लेकिन असलियत क्या है, प्रभु जी बता रहे थे, ओनली मिजरी, दुख के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। इस नीम के पेड़ पर कहीं भी ढूंढेंगे तो मीठा फल नहीं मिलता है, जिसने बनाया है ना उसने लिख के रखा है, माम उपेत तो कौन थे या दुखालयम अशाश्वतम, मैन्युफैक्चरर मैन्युअल में लिखता है कि इसमें सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है, जो भी है वो अशाश्वत है। तो मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट जाके कैसे हम लोग मशीन चला सकते हैं, क्या ट्रन। तो वो सच्चाई है जीवन की, हकीकत वो है कि हम सब लोग दुखी हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका बहुत दुख भोग रहे हैं। इसलिए करुणा की याचना करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि हमें मुक्त करा दो एक बार, बस हो गया। यहाँ पर बार बार अनेक योनियों में धक्के खा खा कर हमने बहुत कष्ट भोगे, इसमें भी कुछ कम कष्ट नहीं भोगे हैं, बुढ़ापे का भोग रहे हैं, शरीर के व्याधि का भोग रहे हैं, मृत्यु का भय से हम परेशान हैं। हमको नहीं चाहिए अभी माया का आसरा, नहीं चाहिए माया का सहारा, नहीं चाहिए ना इंद्रियों का भोग चाहिए, हमें केवल आपके चरणों के शरण चाहिए बस। ये सिंसियरली आप प्रार्थना करना, हाँ ना हमको धन चाहिए, ना प्रैक्टिस चाहिए, ना सेटलमेंट चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारा धन जो है वो आपके धाम में हमको खोलना है, अभी अकाउंट अक्षय खाते में हमको अपना डिपॉजिट देना है, इसलिए हम लोग आए हैं। क्या हमारा अकाउंट आप खोल सकती हैं, पूछिए उनको आप। कोई साइन चाहिए इंट्रोड्यूसर, तो किसी भक्त को बता दीजिए कि हमारे लिए जरा इंट्रोड्यूस करा दीजिए, चाहिए ना बैंक में इंट्रोड्यूसर लगता है ना अकाउंट खोलने के लिए। वो संत लोग हैं, संत लोग हमको सिफारिश देते हैं अकाउंट खोलने के लिए। और अकाउंट में क्या डालना है हमको, सेवा, नाम जप, पुकार, शरणागति, नम्रता, सहनशीलता, ये सब डिपॉजिट डालेंगे तो हम लोग इस जीवन के अंत में दोबारा नहीं आएंगे, सब भगवान के धाम में चल जाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे श्याम, थैंक यू वेरी मच।